जुलाई और अगस्त मास में बहुत अच्छी तपस्या की लहर रहती है। केवल मधुबन में ही नहीं, लेकिन पूरे भारत के सभी सेंटर्स पर चारों तरफ खूब भट्टियां चल रही हैं। यहाँ भी आप सबको बहुत अच्छा गोल्डन चांस मिला है। भट्टी के वातावरण में रहते भट्टी अपने आप हो जाते। अगर समय बैठने का भी इतना नहीं मिलता है, फिर भी जो यहाँ के तपस्या के वाइब्रेशन है, मैं समझता हूँ आप सब बहुत अच्छा योग का अनुभव करते होंगे। आता है रस, आता है योग में कि नहीं? वायुमंडल में ही शांति शक्ति सब प्रकंपन है। न चाहते भी मधुबन का वातावरण खींच लेता है ऊपर। भले शांति वन में तपस्या भट्टियां चलती हैं, फिर भी ऐसा वायुमंडल नहीं बनता है मधुबन जैसा। बनता है? माताएं भट्टी करके आई हो? जिन्होंने भट्टी की हाथ उठाओ। अच्छा, सब करके आए? भाई गए होंगे कुछ, उधर कुमारों की भट्टी चल रही है। माताओं ने तो बहुत अच्छी भट्टी की है, रिजल्ट है अच्छी नहीं? जैसा कहा गया, जो दिनचर्या बना करके दी गई। भीड़ तो थी 3,500 माताएं, लेकिन संगठन अच्छा था, वाइब्रेशन अच्छे थे। मुझे भी महाराष्ट्र में इस बार 2 बार जुलाई में जाने का चांस मिला। सांगली में अभी 25 तारीख से 31 तारीख सांगली, सतारा और पूना भट्टी के ही प्रोग्राम मोस्टली थे। 5-6 दिन में 6-7 सेंटर पर क्लासेज और भट्टियां हुई। सांगली में 1100 माताएं इकट्ठे थे, एक दिन की भट्टी सुबह से शाम तक, 5 क्लासेज हुए सुबह से रात तक। भाइयों की ग्रुप में अलग से 600 भाई अलग थे। भाइयों के दिन कुमारों का अलग संगठन हुआ, माताओं के दिन टीचर्स का अलग संगठन हुआ। बहुत अच्छा एक भावना भी होती है। कोई मधुबन से जाता है, कोने कोने से, गांव गांवों से भाग भाग के आए थे, अलग से हाल बड़ा लिया था, जहां 1,000-1,500 बैठ सकते थे। बहुत अच्छा वातावरण था, जैसा कहो वैसा सब करते हैं। तो समय की बलिहारी है। जहां किसी क्लास में 10-15-20 स्टूडेंट होते थे, आज वो क्लासेस 200-250-300 तक पहुंचे हैं। और जब सभी का इकट्ठा कर लेते हैं तो छोटा पड़ जाता है स्थान, क्योंकि हर एक के पास 200-300 गीता पाठशालाएं हैं। बहुत अच्छा बाबा का सेवाओं का विस्तार जो है, बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ महाराष्ट्र में दिखाई दिया। भावना भी अच्छी दिखाई दी। और एक वंडरफुल नया प्रयोग, बाबा कहता है कि परमात्म शक्तियों के द्वारा कुछ नई कमाल करो। तो महाराष्ट्र के किसानों ने कुछ कमाल किया है। क्या कमाल किया है? योग से खेती कर रहे हैं, खाद से नहीं। योगिक खेती, जिसका नाम रखा शाश्वत योगिक खेती। उसमें कुछ एक थोड़ी बहुत खाद बना करके घर की जैविक खाद, जिससे जीवाणु पैदा हो, कीटनाशक डाल करके मारना नहीं है, लेकिन अच्छे जीवाणु पैदा करके जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको खत्म कर देना है। तो मारने की दवाई डालने की जरूरत नहीं, बहुत महंगी भी है, और दवाई जब जहरीली किसी भी पौधे पर, फल पर, फूल पर, सब्जी पर पड़ती है तो वन भी जहरीला हो जाता है, और उसको जो खाते हैं उनको नए नए प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो शारीरिक और मानसिक दोनों के लिए हरेक की आवश्यकता क्या है, हरेक को है, चाहे वो VIP हो, बड़ा हो, छोटा हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, नौकरी करने वाला हो। आधार कौन सा है? अन्न। अन्न ही आधार है ना सबका, जीवन का। तो अभी किसान भाइयों ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, और संकल्प शक्ति का क्या प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है उसकी रिसर्च की है, प्रैक्टिकल किया है। सिर्फ रिसर्च माना कोई एक दो स्थान पर नहीं, लेकिन 50-60 किसान ऐसी सुंदर योगिक खेती कर रहे हैं। तो जाना हुआ तो सब इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छी एक मीटिंग हुई, उनके अनुभव सुने। उनकी एक इंडिया TV वालों ने 2.5 घंटे की शूटिंग की है, वीडियो लिया है। ऐसा भी हो सकता है क्या? क्या प्रूफ है कि आपके संकल्प से योग की शक्ति का ये चमत्कार है? जो आप कोई खाद नहीं डाल रहे हैं, कोई कीटनाशक नहीं डाल रहे हैं, और इतनी अच्छी फसल डबल। दूसरे ने खेत में बाजू में 22,000 की कीटनाशक दवाई डाली, और उस भाई ने BK ने 1 पैसे की दवाई नहीं डाली, उससे अच्छी फसल उसकी। तो चमत्कार तो लगता है ना, कैसे हो सकता है? कहता है बाबा के योग की किरणें, झंडा लगाया हुआ है खेती पर, झंडा लहराता है तो उसमें जो लाल कलर और पीला कलर है उसकी बड़ी विशेषता सुनाते हैं, साइंटिफिक बताते हैं कि एक है शक्ति देता है लाल कलर, और पीला कलर कीटाणुओं को भगाता है। जब वो झंडा लहराता है खेत के ऊपर तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। बाबा कुछ भी अनुभव कराता है बच्चों को, तो उन भाइयों के अच्छे अच्छे अनुभव, बड़ा निश्चय, टूट निश्चय। तो मैंने भी कहा कि हम सभी योग से अपने संस्कारों का परिवर्तन करते हैं, संस्कारों को दिव्य बना रहे हैं। और बाबा भी आज की मुरली में कह रहे थे, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, बच्चों को गुप्त रीति से शक्ति देता हूँ, जो जितना याद में रहते हैं उनको उतना बल मिल जाता है। तो हम सभी बाबा की याद में रह करके जो बल लेते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, उससे विकारों पर विजय हो जाती है, आंतरिक बुराइयां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन अन्न का प्रभाव जो मन पर पड़ता है, बाबा परहेज तो बताते हैं, तो हम लोग क्या परहेज रखते हैं कि भाई बाहर नहीं खाना, ऐसा वैसा बनाया हुआ, ऐसा वैसा कुछ भी, कोई लहसुन प्याज तक भी डाल करके, कोई ऐसा चटपटा करके नहीं खाना। वो परहेज तो बाबा के बच्चे बने और पालन कर लिया, लेकिन जो खेती से पैदा होकर के आता है उसको तो कोई देखता ही नहीं है, कैसी कैसी खाद से, कैसे गंदे पानी से, कैसे अनेक प्रकार के साधनों से खेती बनाते हैं, अच्छी फसल दिखाते हैं और फिर उसको महंगे दाम पर बेचते हैं। तो बाबा के बच्चे तो भी लाखों में किसान हैं, कितने होंगे? आप लोगों ने कभी खेती की है? कोई करता है? कोई नहीं है खेती वाला? अच्छा दो हैं, अच्छा चार पांच हैं, अच्छा माता जी भी, अच्छा। तो अभी बाबा के बच्चे पूरे भारत के किसानों का अगर संगठन एक बार हो जाए, संगठन माना कोई एक जगह इकट्ठे होने की बात नहीं है, लेकिन करते हैं या कराते हैं, कोई कराते भी होंगे, जमींदार भी होंगे जिनके पास बहुत अच्छी जमीन होती है, ऐसा हम सभी सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि सतयुग की जो शाश्वत खेती है, सतयुग से जो शुरू होगी, वहां तो खाद नहीं होगी ना, कोई अंग्रेजी फर्टिलाइजर, हम सबके पास बहुत बड़ी शक्ति है, एक संकल्प की शक्ति और दूसरी सर्वशक्तिवान की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, कुछ भी कमाल कर सकते, चमत्कार नहीं है, लेकिन अगर यथार्थ उसका प्रयोग किया जाए, शक्तियों का प्रयोग यथार्थ विधि पूर्वक किया जाए, तो कोई भी असंभव संभव हो सकता है। जब हम अपने विघ्नों को टालना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, योग करो, कोई विघ्न है, कोई समस्या है, कोई यज्ञ के ऊपर, परिवार के ऊपर कोई भी प्रकार का बंधन आता है, विघ्न आता है, तो हम योग करते हैं, संकल्प शक्ति है ना, और उससे वो विघ्न हट जाते हैं, समस्याएं दूर हो जाती हैं। कई माताओं ने बाबा को बहुत स्नेह से याद करके, योग करके अपने विघ्न, अपने बंधन काट लिए हैं। शुभ भावना की शक्ति बहुत अच्छा चमत्कार करती है, जादू मंत्र का काम करती है। संकल्प शक्ति का प्रयोग करने के लिए यंत्र कौन सा है? शुभ संकल्प, श्रेष्ठ भावनाएं। अगर भावनाओं में कोई भी प्रकार का नेगेटिव प्रवेश हो गया, ये कैसे हो सकता, ये तो होगा ही नहीं। अंधश्रद्धा की भावना नहीं है, लेकिन एक दृढ़ता से विश्वास है, वो विश्वास भरी भावना है। एक बार वहां पर बताया उन्होंने कि कीड़े लग गए, तो किसान को बड़ा डर लगा कि अभी क्या करूं, हिला, दवाई खरीदने के लिए जा रहा था, बहन को पता चल गया, टीचर को पता चल गया, बोली बिल्कुल नहीं डालना, मैं आ रही हूँ तुम्हारे खेत में योग करूंगी, सबको बिठा दिया खेत पर। जब दृढ़ता है तो सफलता है, सब कीड़े भाग गए। ऐसा योग किया बैठ करके, संकल्प शक्ति का प्रयोग किया, तो बोलती है जो दवाई से मरते नहीं, और अगर दवाई से मार भी दिए जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, फसल भी नहीं बचती, तो कहती है ऐसा योग किया जो नया किले निकलने लगे उसमें से। संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, असंभव भी संभव हो सकता है, जब सूक्ष्म संस्कार परिवर्तन हो सकते हैं। जब स्थूल में डॉक्टर्स ने आर्टरीज को, ब्लॉकेज को रोक कर, खोल करके दिखा दिया, जो हार्ट ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं, भावना से नए नए आते हैं, कोई योग सीखे हुए थोड़ी होते हैं, पहले पहले आते हैं बाबा के घर में, और उनको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दे करके, और कहते हैं अभी योग लगाओ, और योग लगा के योग के किरणों का प्रयोग करो, 6 महीने के बाद उनकी आर्टरीज खुलने लगती है धीरे धीरे। खान पीन की परहेज, एक्सरसाइज और योग, क्योंकि पहले तो आत्मा तनाव से मुक्त हो जाती है, पहले तो टेंशन फ्री हो ना, विचारों में शुद्धता आ जाए, भावनाओं में श्रेष्ठता आ जाए, बहुत अच्छी से चिंतन चलने लगे, तो हार्ट सीज खुल जाती है शरीर की स्थूल में। तो हमने उनको कहा कि हाँ हो सकता है, असंभव नहीं है, क्योंकि पौधे भी आवाज सुनते हैं, इनसे भी बात करने की अकल चाहिए, ये भी प्रकृति है, हमको अन्न देती है, उससे हमारा जीवन चलता है, निर्वाह होता है। इसलिए आप सभी अच्छी तरह से सातों गुणों का प्रयोग करो एक एक पौधे पर। जैसे हम शरीर के ऊपर 7 गुणों का प्रयोग करते हैं, आत्मा की 7 जो गुण है, उन गुणों का प्रयोग, विशेष इसका कोर्स बनाया है कि ज्ञान का प्रयोग ब्रेन के ऊपर करो, पवित्रता का प्रयोग इन आँखों पर, इस फेस पर करो, दृष्टि पवित्र हो जाए, मुख शीतल हो जाए, इस पर पवित्रता की शक्ति का प्रयोग करो, अपने इन श्वासों पर, फेफड़ों पर शांति की शक्ति का प्रयोग करो, धैर्यवत सांस चलने लगे, अपने हार्ट के ऊपर प्रेम की शक्ति का, प्यार के सागर के किरणों का प्रयोग करो, हार्ट अच्छा काम करने लगे। अपने पेट के ऊपर सुख की किरणों का प्रयोग करो, सुख स्वरूप होकर के रहो, खुशी की खुराक खाओ और खुशी की खुराक खिलाओ। अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए आनंद की शक्ति का प्रयोग करो, आनंद स्वरूप आनंद के सागर का बच्चा हूँ। अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए शक्ति शक्ति स्वरूप का अनुभव करो। तो सातों गुणों का प्रयोग पूरे शरीर को निरोगी बनाए, यही रिसर्च किया है और कोई दूसरी रिसर्च नहीं है, डॉक्टर सो सिखा रहे हैं। कभी कभी अलग अलग एक एक गुण का प्रयोग सिखाते हैं और कभी कभी सातों गुणों को मिक्स करके, जैसे जब सूर्य की किरणें किसी बादल पर कहीं पड़ती हैं तो सप्त का इंद्रधनुष बन जाता है, इंद्रलट जिसको बोलते हैं, उसमें सात रंग दिखाई देते हैं। तो जब ज्ञान सूर्य की किरणें आत्मा पर पड़ती हैं, बुद्धि एकाग्र हो जाती है, तो वो सातों किरणें सातों गुण आत्मा के बढ़ने लगते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, जो छिप गए थे दब गए थे उन गुणों में वृद्धि हो जाती है और उनकी वृद्धि से शरीर निरोगी हो जाता है। तो अब बाबा हम बच्चों को कहता है कि चलो शरीर के ऊपर प्रयोग करो, अपने संस्कारों के ऊपर प्रयोग करो, अपने बंधनों के ऊपर प्रयोग करो, जो रुकावटें मार्ग में आ रही हो, जो विशेष विकार सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, उन पर प्रयोग करो। सिर्फ योग नहीं करो, योग तो बहुत किया लेकिन योग की शक्ति को यूज करो, काम में लगाओ, प्रयोग करो, तो आपके विघ्न कट जाएं, परिस्थितियां हट जाएं, बंधन कट जाएं, आत्मा बिल्कुल डबल लाइट बन जाए, हल्की बन जाए, बोझ खत्म हो जाए। कैसे होंगे? बाबा की योग की किरणों से, शक्ति से। तो जब बाबा को हम याद करेंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, तो बाबा से कनेक्शन जुटते ही जो करंट आएगी, सर्व संबंधों की शक्ति आएगी, रस आएगा, उस रस से आत्मा पावन बनती जाएगी, निरोगी बन जाएगी। सतयुग की स्थापना केवल आत्मा को पावन बन करके ही सतयुग नहीं आएगा, तो को भी पावन बनाना पड़ेगा। पांच तत्व प्रकृति के, प्रकृति के तत्वों को अगर हम योग का दान नहीं देंगे तो ये कैसे सुधरेंगे, कैसे सत्व प्रधान बनेंगे। इसलिए बाबा कहता बच्चे एकांत में बैठ करके, मेरे साथ मूल वतन में बैठ करके, इन पांचों तत्वों को भी, पूरे ब्रह्मांड को, इन पांच तत्वों के मांडवे को सर्च लाइट दो। केवल ग्लोब को नहीं, ग्लोब के ऊपर बैठ करके सिर्फ ग्लोब को नहीं, लेकिन ग्लोब घूम कहाँ रहा है? सब ग्रहों के बीच में घूम रहा है। कहते हैं ग्रहों से उड़ जाती है जीव जीवन चलाने के लिए। किसी ने अभी मीटिंग में, हमारी एक बहन आई थी, वो एक रिसर्च कर रही, संजीवनी संस्था है उसकी, उसने भी सब केमिकल्स बंद किए खेती पर प्रयोग करने के लिए। लेकिन उसका कहना था कि संकल्प की पावर जब हमने सुनाई तो उसने कहा कि ग्रहों से शक्ति आती है, जिससे उस एनर्जी को, ऊर्जा को हम एकत्र करते हैं और उस ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं और उससे बहुत सफलता अच्छी मिलती है। तो हमने कहा ये तो ग्रहों की बात है, इस भूमंडल की बात है, हमारे पास तो इसके ऊपर वाली शक्ति है साथ में, जो पांचों तत्वों के मांडवे से ऊपर है और उस शक्ति को केवल हम सब बच्चे ही पहचानते हैं, कोई आज तक उसको पहचान नहीं पाया। और पहचान है तो सबके पास अधूरी है, घर को ही भगवान मान रहे हैं, रहने के स्थान को ही परमात्मा कहते हैं। और हम सब क्या कहते हैं कि जहां पर बाबा रहता है वो परम धाम, वो शांति धाम, वो निर्वाण धाम रहने का स्थान है, वहां सूर्य चांद की पहुंच नहीं है। इंसान को कोई भी प्रकार का ज्ञान इस बात का नहीं है और बाबा ने हम सबको उस घर की शक्तियों का अनुभव, घर का अनुभव, कैसे आत्मा संपूर्ण पावन रूप में रहती, कोई भी पतित नहीं, कोई भी अशुद्ध संस्कार वाली नहीं, जो भी जाएगी हिसाब किताब चुक तो करके पावन बन करके जाएगी, रहने का सर्टिफिकेट उसको ही मिलेगा। जब सर्व आत्माएं वहां रहती हैं तो कितनी पावन है, और उस पावन घर की शक्ति कितनी है। इसलिए बाबा कई बार कहता है, बच्चे तुम मुझे यहां याद नहीं करो, वहां याद करो। मैं यहां आता हूं, जैसे दादी में बाबा आते हैं, गुलजार दादी में बाबा आए, बाबा बैठे हैं, बाबा से बातें कर रहे हैं, बाबा को भोग भी खिला रहे हैं, फिर भी बाबा के कमरे में जाके भोग लगा रहे हैं। बाबा यहां बैठा है और कमरे में अलग फोटो के आगे बैठ के योग कर रहे हैं। क्यों करते हैं? बाबा तो साकार में आया हुआ ना, ऊपर कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं? एक बार हम लोगों ने ऐसे पूछा था कि बाबा आया है मेडिटेशन हॉल में और भोग लगाने वाली संदेशी बाबा कमरे में फोटो के आगे बैठ के भोग लगा रही। चैतन्य में जब आया तो जड़ के आगे लगाने की क्या जरूरत? तो बाबा ने इसका उत्तर दिया था, बच्चे बाबा भले साकार में आता है, लेकिन आप बच्चों को बुद्धि से घर में आना है। वहां की जो पवित्रता है, वहां की जो शांति है, वहां की जो शक्ति है, वहां जो बाबा के वाइब्रेशन है, उसका अनुभव करके फिर भोजन को शुद्ध बनाना है। मैं भले साकार में आया हूं, लेकिन तुम बच्चे ऊपर आओ, योग ऊपर लगाओ, बुद्धि ऊपर करो, क्योंकि इस पांच तत्वों के मांडवे में बहुत तमोगुणी आत्माएं भटक रही हैं, उनके नेगेटिव वाइब्रेशन है। इस वायुमंडल के अंदर कितनी आवाजें हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत पुरानी कहते महाभारत काल की आवाज को कैच करेंगे, कैसे युद्ध हुआ था, कैसे कौरव पांडव लड़े थे, उस समय की आवाज को कैच करेंगे 5000 साल की। साइंटिस्ट प्रयास कर रहे हैं, और बाबा ने हम सबको बता दिया है कि बच्चे तुम 5000 वर्ष के संस्कारों को कैच करके अभी पावन बनो। ऐसे पावन नहीं बन पाओगे, ऐसे मेहनत है, युद्ध है, लेकिन तुम अपने आदि संस्कारों को इमर्ज करो कि मैं ही देवता था और मैं इतना पावन था, इतना स्वच्छ था, कोई भी विकार नहीं थे, कोई भी हिसाब किताब नहीं था, कोई संबंध नहीं थे। आत्मा पावन उतरी सतयुग के अंदर, वो आदि संस्कार कितने प्योर थे, उन संस्कारों को इमर्ज करो, और उनको इमर्ज करके अभी के नेगेटिव संस्कार, विकारी संस्कार, संग दोष के संस्कारों को परिवर्तन करो। तो अपने मूल वतन की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, सर्वशक्तिवान की शक्ति को लेकर के इस समय आत्मा को पावन बनाओ, फिर आदि शक्तियों को लेकर के पावन बनाओ। इसलिए हम मूल वतन में जाकर के बाबा को याद करते हैं, बुद्धि से जाते हैं, शरीर से तो यही है, आत्मा भी यही है, निकल नहीं गई, लेकिन मन बुद्धि से हम यात्रा करते हैं, और यात्रा करके बाबा के पास जाके उन शक्तियों का अनुभव करके आते। तो जब हम ऊपर से योग करते हैं तो ऊपर की किरणें जब आत्मा पर आती हैं, कोई भी प्रयोग करना हो, प्रयोग करने की विधि यही है, जैसे सोलार लगाते हैं ना, सोलार लगाया है, यहाँ भी लगा है, शांतिवन में भी लगा है, बहुत बड़े बड़े सोलार सिस्टम बने हैं, सूर्य तो किरणें दे रहा है, उसकी पावर तो चारों ओर फैल रही है, रोशनी तो है, उसमें इतनी ऊर्जा है, किसी को पता था, लेकिन साइंस ने खोजा। उसको एकाग्र करने के लिए कांच लगाए, और कांच भी उसकी तरफ मोड़ दिए, ऐसे नहीं ऐसे इधर उधर कांच लगा दिए, और कांच की सफाई करना है, कांच को एकदम बिल्कुल क्लीन रखना है, ऐसे नहीं गंदा कांच हो, गंदा है, सामने नहीं है, सूर्य की तरफ नहीं है, तो भी जो आपका पानी है या आपका जो पाइप जा रहा है वो गर्म नहीं होगा, भाप नहीं बनेगी, स्टीम नहीं बनेगी, तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो बाबा भी कहता है, मैं ज्ञान सूर्य हूं, तुम अपनी बाबा की शक्तियों को अपने पर एकाग्र करके फिर इसका प्रयोग करो, लेकिन कांच बहुत शुद्ध चाहिए, कांच माना बुद्धि, ये जो बुद्धि है ना बहुत दिव्य चाहिए, बहुत अलौकिक चाहिए, बहुत पवित्र चाहिए, कोई भी उसके अंदर इधर उधर की बातें, ये ऐसे करता वो ऐसे करता, यहाँ वो हुआ यहाँ वो हुआ, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, जिस जरा भी किसी की सुन लिया चिंतन चल गया, और उसी चिंतन में फिर सोच सोच करके अपने दृष्टिकोण को भी ऐसा बना लेते हैं, उसको देखेंगे संकल्प चल जाएगी यही ऐसा ये करता है, ऐसे बुद्धि मलिन हो गई। अब बुद्धि मलिन हुई योग कैसे लगेगा, कहीं इंगेज हो गई बाबा की टचिंग कैसे आएगी, कहीं पर भी फंस गई प्रभावित हो गई बाबा से विमुख हो गई। अगर बुद्धि रूपी दर्पण साफ है स्वच्छ है बिल्कुल कोई भी प्रकार का सोच नहीं चल रहा, सोच है लाइट है बोझ नहीं है, बोझ वाली थकी हुई बुद्धि बाबा की लाइट को ले नहीं सकेगी। इसलिए बुद्धि को बहुत अच्छा रखना, बुद्धि को बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाना, अच्छा चिंतन ही बुद्धि का अच्छा भोजन है। बाबा की मूल्यां इसलिए चल रही हैं, वरदान स्लोगन प्रश्नोत्तर कई बातें आप मुरली के अंदर ऐसे सुनते हो, तो मनन करो चिंतन करो कितना रमणीकता से बाबा सुनाता है। आज कितने सारे पंछियों का नाम लिया, मैना भी बनाया तोता भी बनाया बुलबुल भी बनाया, फिर बाद में बोल दिया काबर भी है। काबर देखिए ये सात चिड़िया है ना घूमती मोटी मोटी, बहुत लड़ती हैं आपस में, जहां बैठेंगे एक दूसरे को चोंच मारेंगे, काबर झगड़ा करने वाली। तो बाबा ने कहा ऐसा तोता भी नहीं बनो जो कंठी वाला न हो बोल न सको ज्ञान, ऐसे काबर भी नहीं जो सारा दिन लड़ते रहो झगड़ते रहो खाते रहो, खाने के पीछे झगड़ते हैं, यहाँ भी ऐसे ही खाने के पीछे झगड़ता रहे कोई, लेकिन ज्ञान की बुलबुल बनो मीठी मीठी टिकलो 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 टिकलो, बाबा की आवाज जो बाबा ने सुनाया वो दूसरों को सुनाओ। कंठी वाले तोते बनो, वो रट्टू तोते नहीं, ऐसे नहीं चुपचाप बैठ गए, ऐसे कबूतर नहीं बनो सिर्फ घूम घूम करते रहो, संदेश देने वाला संदेश वाहक बन जाओ। तो बाबा हम सबको रमणीकता से कितना सुनाता है, कभी पंछियों से मिसाल दिया फिर फूलों से मिसाल दिया, कोई गुलाब का फूल है कोई मोतिया का फूल है कोई अक का भी फूल है। तो ऐसे जो बाबा कहता है कि उसमें चेक करना चाहिए मैं कौन हूँ, सुनाने का मतलब यही है ना बाबा का, मैं कौन हूँ अपने आप से पूछना है कि बाबा ने मुझे इतना पढ़ाया है मुझे इतना सिखाया है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कितना प्रैक्टिकल में धारण किया है। अगर बाबा की एक एक बात को हम सुनते हैं उस पर मनन करते हैं चिंतन करते हैं, दादी आज मुरली पढ़ती जा रही थी जानकी दादी, बार बार हाथ दो लाइन पढ़ ले फिर मेरे को फोन कर दे, फिर पढ़े फिर फोन करे हमने क्या हो गया दादी आज, बोलती ये बहुत अच्छी बात है ये बहुत अच्छी बात है ऐसा ये लिखो सबको ऐसा ये करो, पढ़ती जाए 10 बजे। तो मैंने कहा अहमदाबाद में वो हम यहाँ कम से कम 7-8 फोन आ गए, हंसाबेन कहती तुम ही ब्राह्मणी बन जाओ इनके साथ रहो। हमने कहा क्या हो गया, कहते बार बार हर दो लाइन पढ़ कर कहती फोन लगाओ, तो कब कितने बार फोन लगाऊं, तो कोई बात नहीं दादी को संकल्प जब आते है ना कोई तो कहाँ कंट्रोल करे इसलिए सुना दो। तो दादी ने आज की मुरली पढ़ते पढ़ते कितनी बार फोन कर दिया मेरे को, ये बात लिखो ये बात बहुत अच्छी ये अंडरलाइन है। तो अगर हम ऐसे बाबा की मुरली को स्टडी करें हमारा भी चिंतन बाबा की मुरली पर अच्छा चले तो श्रेष्ठ चिंतन श्रेष्ठ भोजन मुरली से ही मिल जाता और कोई जरूरत नहीं है। तो अच्छा अच्छा भोजन खाओ और अच्छा भोजन खा करके अंदर से आत्मा को हेल्दी बना दो, अच्छे संकल्प से शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बन जाएंगे और शुभ चिंतक बनते बनते हमारी भावनाएं बहुत शुभ और श्रेष्ठ हो जाएंगी, फिर ये शुभ भावनाएं मनसा सेवा में मदद करेंगी। किसी पर भी करो असंभव कोई भी कार्य नहीं है, चाहे तत्वों पर करो चाहे ये प्रकृति जो हमको अन्न दे रही है उस पर करके देखो। तो हमारा तो एक लक्ष्य है इस साल का है, प्रोजेक्ट हमने बनाया है बना रहे हैं कि हम पूरे भारत के किसानों को कम से कम अपने लिए और बाबा के घर के लिए बाबा के परिवार के लिए ऐसा अन्न पैदा करें जो बाहर से लेना ना पड़े, खाद वाला इधर उधर का जरूरत नहीं है, ऐसी योगिक खेती हो। तो हमने टाइटल दिया है शाश्वत योगिक खेती, नए युग के लिए एक नया कदम, नया युग इसी से आएगा और नए युग में ऐसा ही अन्न मिलेगा, क्योंकि बाबा कहता है इतनी खाद पड़ जाएगी इतने सब शरीर छोड़ेंगे इतना सब उथल पुथल होगा इतने पेड़ पौधे, इतने जीव जंतु, इतने जानवर, इतने मनुष्य, सबकी खाद, खून की अच्छी खाद मिल जाएगी। कितनी खाद मिलेगी एक साथ सृष्टि को? आधा कल्प के लिए कोई खाद तो डालनी नहीं पड़ेगी खेती में, इतनी उपजाऊ धरती होगी, कोई खाद जरूरत नहीं है। और योगी आत्माएं करेंगी, जो इस समय की योगी गई हैं, तो वो अन्न तो शुद्ध होगा ही, इसलिए सब निरोगी होंगे। कोई कोई रोग किसी प्रकार का नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, ऐसा अन्न खा रहे हैं ना, तो अन्न से मन भी शुद्ध है, तन भी स्वस्थ है। द्वापर के बाद फिर धीरे 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 धीरे, पहले ऋषि प्रधान करते थे, ऋषि लोग आध्यात्मिक शक्ति से करते थे, योग से करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर लालच बढ़ता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, तो धरती को जितनी उसकी शक्ति थी खींच ली दवाइयां डाल डाल करके, खाद डाल डाल कर। और अभी धीरे धीरे कहते हैं क्या करें, शक्ति खत्म हो गई, अनाज ही नहीं हो रहा है, कितना भी डाल दो, कभी बरसात नहीं पड़ रही है, कभी सूखा पड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो अब हम सभी बाबा के बच्चे प्रयोग करें, जो कम से कम हम वर्तमान समय भी स्वस्थ रहें और आने वाली दुनिया की शुरुआत भी हो जाए। तो ऐसा एक संकल्प है कि पूरे इस प्रोजेक्ट को पूरे भारत के अंदर गांव-गांव तक, एक एक किसान तक हम पहुंचाएं, जिससे हमारा भारत देश फिर से स्वर्णिम बने और सभी किसान लग जाएं सेवा में, क्योंकि भावनाएं उनके पास बहुत हैं। जैसा उनको पढ़ाओ वैसा मानते भी हैं, उनकी बुद्धि और नहीं चलाते, तेरे मेरे की नहीं, जिस प्रकार के तरह से गाइड करो मानते हैं। तो हमने एक बार ही सिर्फ गाइड किया था अपनी मीटिंग में, आज 50-60 किसान कोल्हापुर सांगली इस तरफ कर रहे हैं। यहाँ भी तुलसी भाई एक बहुत अच्छा करता खेती अपने शांतिवन तपोवन में। तो हम ऐसा एक सुंदर प्लान बनाए, संस्कार परिवर्तन दिव्य बनते जाए, योग के प्रयोग से प्रयोग करेंगे तो बनेंगे। शरीर पर भी बीच बीच में प्रयोग करो, लेकिन प्रयोग की सबसे अच्छी विधि है, जैसे साइंटिस्ट ने कोई खोज किया प्रयोग किया तो एकांत जरूरी है, इधर उधर नहीं गए, भटके नहीं, बैठ गए और बिल्कुल सब प्रकार सब चीजों से वैराग्य था, कुछ नहीं देखते थे, खाना पीना भी भुला दिया, इतनी एकाग्रता से एकांत में बैठ करके कोई चीज की खोज किया। हम भी अगर योग का सच्चा प्रयोग करना चाहते हैं तो सब रसों से, सब प्रकार की आकर्षण से, बोलने की, देखने की, खाने की, पीने की, जहां जहां बुद्धि रसों में जा रही है उन सब रसों को समेटना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, एक चित्त होना पड़ेगा, एक वृत्ता बनना पड़ेगा, एक बाबा दूसरा न कोई, किसी में भी बुद्धि न जाए, कोई कितना भी अच्छा हो, बाबा की ही शक्तियां लेनी है और सबको देनी है। तो बाबा सर्वशक्तिमान है, बाबा आलमाइटी है, उसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, और आत्मा उन शक्तियों से संपन्न हो जाएगी तो ये नजर जिस पर पड़ जाएगी वो निहाल हो जाएगा, चाहे तत्वों पर पड़ जाए, चाहे व्यक्ति पर पड़ जाए, चाहे किसी भी पड़ जाए, लेकिन ये नजर अपना काम करेगी। इसलिए बाबा कहता है कि इतनी शक्तिशाली आत्मा बने, बीज शक्तिशाली बन जाए, तो उसके हर संकल्प, हर कर्म, हर बोल सिद्धि देने वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी शक्ति भरो अभी भट्टी के अंदर योग की, जिससे योग से आत्मा बिल्कुल चमकने लगे, दाग निकल जाए, और हीरे जैसी चमक जब आत्मा में आ जाएगी तो उसका व्यवहार भी शुद्ध, उसके संस्कार भी पवित्र, उसकी सब गंदगी अपने आप खत्म हो जाएगी। कभी नहीं कहेंगे क्या करूं, बहुत तूफान आते हैं, बहुत युद्ध चलती है, कब तक चलेगी, ऐसा ही चलता रहेगा क्या, संगम युग ऐसे बीत जाएगा। संगम युग माना मौज का युग है, संगम युग माना भगवान से प्राप्तियों का युग है, खूब लो अच्छी तरह से बाबा से, और लेकर के फिर सबको बांटो, कोई इंसान से कुछ नहीं चाहिए, इसका नाम योग है। लो एक से दो सबको, किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो इतनी लाइन क्लियर हो, इतनी बुद्धि क्लीन हो, जो बाबा की सब शक्तियां हमारे पर आती जाएं, और उन शक्तियों के आधार से संपन्न बन करके फिर हम मास्टर दाता बन सके। ओम शांति।